તારીખ 14/5/1994 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 120. મૂળ કેસેટમાં વચ્ચે વચ્ચે બીજો અવાજ આવે છે.
શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક 7મા અધિકાર જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા સ્વરૂપ નિરૂપણ કરતે હૈ. उसमें पन्ना नंबर 238 हिंदी में 238 पैराग्राफ से लेना है. पहला पैराग्राफ से ऐसी पहचान के बिना यहाँ से आगे सिद्धांत के विषय में कैसा यथार्थ सिद्धांत करता है नौ तत्वों का. सम्यक ज्ञान के विषय में शास्त्रादि का अध्ययन में यथार्थता कैसे रहती है वो बात चली है. अब कहते हैं कि आचरण के विषय में यथार्थता होने से उनको सम्यक चारित्र भी नहीं आता. व्रतादि पालन करता है शास्त्रोक्त फिर भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है. ये विषय चलेगा. क्योंकि परिणाम को तो ठीक करने के लिए व्रतादि करता है लेकिन अपना अभिप्राय तो बदला नहीं है. तो अभिप्राय तो ज्ञान की पर्याय है. ज्ञान बदले बिना आचरण सुधरता नहीं है ये सिद्धांत निकलता है यहाँ से. ऐसी पहचान के बिना बाह्य आचरण ही उद्यम है. ऐसी पहचान के बिना मैंने अपने अभिप्राय को सोचे बिना और अपने परिणाम को समझे बिना बाह्य आचरण का एक उद्यम कोई करता है वहाँ कितने ही जीव तो कुल क्रम से करता है. कितने जीव तो कि हमारे कुल परंपरा में हमारे संप्रदाय में हमारे मंदिर में हमारे मंडल में तो ऐसे प्रकार की परंपरा है क्रियाओं की. अथवा देखा देखी या क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं या तो देखा देखी से दूसरा करता है उसकी नकल करता है कि इससे मैं अच्छा करूं या तो कोई अभिप्राय कषाय का रखता है मान का रखता है. मान का बहु भाग तो मान का रखता है. फिर कोई लोभ का भी रखता है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा ऐसा करने से ऐसा मिल जाएगा. कहीं ना कहीं प्रकार के संयोग वियोग की अभिलाषा रख करके जो करते हैं वो लोभ है. मान और लोभ है वहाँ माया और क्रोध तो कभी आ जाएगा पता चलेगा नहीं. ऐसे आचरण करते हैं उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है. देखो जो कुल क्रम से संप्रदाय बुद्धि से करते हैं सामाजिक बुद्धि से करते हैं देखा देखी से करते हैं क्रोधादि मान लोभादि से करते हैं धर्म बुद्धि उसमें नहीं है. बुद्धि मैंने अभिप्राय धर्म करने का अभिप्राय नहीं. वहां जो अभिप्राय है वो कुछ न कुछ कषाय का अभिप्राय है. धर्म का अभिप्राय नहीं है. विकराकता का अभिप्राय नहीं है. उनके तो धर्म बुद्धि नहीं है. सम्यक चारित्र कहाँ से हो. उनको तो सम्यक चारित्र होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. प्रश्न चिन्ह लगाया. उन जीवों में कोई तो भोले हैं वे कोई कसाई है. कोई तो भोले हैं मैंने मंदक्कल वाले हैं. भोले मतलब मूर्ख है. हाँ मूर्ख है उसको बुद्धि ज्यादा नहीं है. महाराज कहते हैं कर लो. महाराज ने अपना गुरु है कहते हैं कर लो. कोई तो कसाई है, मैंने मानादी लुभादी कसाई से प्रवर्तन करते हैं, कोई तो भोले हैं व कोई कसाई है। सो अज्ञान भाव व कसाय होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। भोलापन है वो अज्ञानता है, वो अज्ञानता से भी काम होने वाला नहीं है। तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। ये लोग जो है शास्त्र अध्ययन करते हैं वो तो जानकारी कर लेते हैं, इससे क्या फायदा, मात्र जानने से या बातों करने से, ज्ञान की बातों करने से क्या फायदा, कुछ करेंगे तो पाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया में क्रिया के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते हैं। कुछ तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते, क्रिया में उलझते रहते हैं, तत्व ज्ञान का कोई उपाय, ये संप्रदाय का स्पष्ट चित्र है। आजकल जो तीनों संप्रदाय में चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। जहाँ तत्व की समझ नहीं है, कुछ भी आचरण करे सब मिथ्या चारित्र है। और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रत आदि नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। व्रत नहीं है फिर भी सम्यक दृष्टि तो नाम पाता है, मिथ्या तो विशेषण नहीं लगता, सम्यक तो विशेषण लगता है। भले ही असंयत हो लेकिन विशेषण सम्यक्त्व का लगता है, मिथ्यात्व का लगता नहीं है। इसके आचरण को भले व्रतादि नहीं करता है तो भी इसके आचरण को मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते। क्या कहा, अव्रती असंयत सम्यक दृष्टि को कोई व्रतादि नहीं होता। अरे दिन में एक बार नमस्कार मंत्र का नाम लेना, नमस्कार मंत्र बोलना, उतना भी उसको शायद नहीं हो तो भी उसको आचरण को मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे, इसके आचरण को मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे। और ये 28 मूल गुण समेत पंच महाव्रत आदि पालन करे तो भी उसका आचरण को मिथ्या चारित्र कहेंगे।
चारित्र को
नहीं, मिथ्या चारित्र है। ए चारित्र तो किसको कहते हैं कि जो शुद्ध आचरण है, स्वरूप आचरण है, तो आत्मा का चारित्र है। लेकिन जो शुभभाव है वो अचारित्र है। किसका, मोक्ष मार्गी धर्मात्मा का, उसको अचारित्र कहते हैं। इनके जो शुभाशुभ परिणाम है उसको अचारित्र कहते हैं, मिथ्या चारित्र नहीं कहते। मोक्ष मार्गी का जो भी शुभाशुभ परिणाम है वो अचारित्र है, मिथ्या चारित्र नहीं है। पर स्वरूप में आचरण, स्वरूप में स्थिरता लीनता जितना भी परिणति है चारित्र गुण की, वो सम्यक चारित्र है, वो शुद्ध चारित्र है, तो स्वरूप आचरण चारित्र है। तो अचारित्र का नाश करेगा और स्वरूप आचरण चारित्र पूरा करके यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करेगा। जैसा और मिथ्यात्व अवस्था में मुनि दशा लेकर के, मुनि दीक्षा लेकर के पंच महाव्रत आदि का पालन करे, समिति गुप्ति का पालन करे तो भी सब मिथ्या चारित्र है, अचारित्र नहीं है, मिथ्या चारित्र है वो। ऐसी बात है। बाह्य व्रतादि के हिसाब से कहते हैं कि बाह्य संयम नहीं लिया, एक बात। दूसरा कि बाह्य संयम के अंतरंग कारणभूत जो पंचम गुण स्थान और छठे सातवें गुण स्थान में परमार्थ संयम के पुरुषार्थ की डिग्री के जो परिणाम है उतनी डिग्री के परिणाम नहीं है, उसी को दर्शाने के लिए वे असंयमी कहने में या अवृत्ति कहने में आता है। वो स्पष्टीकरण टोडरमल जी ने गोमट सार की टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका में वो स्पष्टीकरण दिया है और अपने भी दंशन मूलोद्धमों में उसकी चर्चा की है कि सम्यक दृष्टि फिर भी अवृत्ति, अवृत्ति सम्यक दृष्टि या ऐसा विशेषण क्यों? इसलिए कि ऊपर के गुण स्थान वाले की जितने मोक्ष मार्ग की स्थिति है, पुरुषार्थ है, स्वरूप लीनता है, उतना आचरण नहीं है स्वरूप का, वही दर्शाने की बात है। लेकिन नहीं है वो दर्शाने की बात नहीं, ऐसा स्पष्टीकरण दिया है। तो करणानुयोग का वहां ग्रंथ चलता है तो जितना है उतना कहेंगे। करणानुयोग को तो तोल माप करके बात करता है, हाँ, तो जितना है उतना कहेंगे। अध्यात्म की तरह नहीं, अध्यात्म में तो उसको कहेंगे कि वो परमात्मा है। 143 गाथा में क्या कहा अमृतचंद्राचार्य ने कि पक्षांतिक्रांत हो गया और स्वरूप का अनुभव किया, वो पर आत्मा परमात्मा समयसार ऐसा शब्द लगा दिया, समयसार भी बोल दिया उसको। अध्यात्म की बात अलग है, करणानुयोग की बात अलग है। व्यक्ति वो की वो है, गुणस्थानों का वो है, लेकिन भाषा अलग अलग आएगी, विवक्षा अलग अलग आएगी। आता है वहाँ असंयमी को किसका नाम लिया है तो जो वस्त्रादि धारण करके साधुपना मनाता है, मुनिपना मनाता है, और जो नग्न होते हुए भी सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको असंयमी कहा है, नहीं कहा है। ग्रंथ तो है अपने पास, दूर तो नहीं है। कौन से दर्शन पाउडर में है? पहला दर्शन पाउडर है ना, सूत्र बाहुल, दर्शन बाहुल। असंयम न बंदे मच्छीणों भी न बंदी जो दोही नहीं होते समणा एगो ही न संज दो हो दे। असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। भाव संयम नहीं हो और बाह्य में वस्त्र रहित हो, क्या भाव संयम मैंने छठे सातवें गुण स्थान यानी कि सम्यक्त्व नहीं हो और वस्त्र रहित हो, वह भी वंदन योग्य नहीं है, भले ही वो बाह्य में वस्त्र रहित हो, क्योंकि ये दोनों ही संयम रहित समान हैं, इनमें एक भी संयमी नहीं है। नहीं आता है ये तो प्रकरण मुनि का चल रहा है, प्रकरण सम्यक दृष्टि का नहीं चल रहा है। कल्याण परंपरा लहिदा जीवा विश्वभूमि समेदेश्वरासुरे लोए। देखो आगे कहते हैं वो 26 गाथा चली असंयम न बंदे ही। अपनी बात को तो आचार्य काटेंगे नहीं, कोई भी बुद्धिमान नहीं काटेंगे, आचार्य का तो सवाल ही नहीं होता। अब 33 गाथा में वो क्या कहते हैं के कल्याण परंपरा लहंती, कल्याण की परंपरा लेने वाला है जीवा विशुद्ध सम्मतम, जो जीव विशुद्ध सम्यक पे सहित है, सम्यक दर्शन रयणम, जिसको सम्यक दर्शन रत्न पाया है, अज्ञेदी सुरासुरे लोए, उसको तो लोक में सूर और असुर दोनों अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ्यते, हाँ अज्ञेदी शब्द लिखा है। अजीत भाई ऐसी बात किया है। कुंद कुंद आचार कहते हैं उनको, तो सम्यक दर्शन चारित्र तीन रत्न कहने चाहिए थे, यहाँ तो सम्यक दर्शन रूपी रत्न एक बोला है, दूसरे दो का तो नाम ही नहीं लिया है क्या? जीव विशुद्ध सम्यक्त्व को कल्याण की परंपरा सहित पाते हैं, क्योंकि उनको तो कल्याण की परंपरा ज्ञान होने वाली है, उन्हीं दशा आएगी, केवल ज्ञान आएगा, वो सब आएगा, वो इसकी परंपरा में है, इसलिए सम्यक दर्शन रत्न है, वह इस सुर असुरों से भरे हुए लोक में पूज्य है, ये शब्दार्थ किया है। आगे कहते हैं कि लोक में सम्यक दर्शन रूप रत्न अमोलक है, वह देव दानवों से पूज्य है, क्योंकि 32 गाथा में ले लिया है, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों लिया है सम्यक तो सहित, चतुर्नामपि समायोगे सिद्धा जीवान संदेह, ज्ञान और दर्शन होने पर सम्यक तो सहित तप और करके चारित्र पूर्वक इन चारों का समायोग होने से जीव सिद्ध हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है, वो आगे ले लिया है तीनों का। अब एक यहाँ से एक सम्यक्त्व की गाथा लिया है, प्रकरण दर्शन पाहुड़ का है, श्रद्धा प्रधान तो प्रकरण है पूरा, वो भी सही है, प्रकरण भी श्रद्धा प्रधान चल रहा है, तो 33वीं गाथा में उसको ना बोले असंगण मंदे ही, और 26 में ना बोले और 33 में अर्घ चढ़ाने को बोले, वो कोई बनता है क्या? छब्बीसवीं गाथा के भावार्थ लिखा है, जिसने गृहस्थ का भेष धारण किया है वो तो असंयमी है ही, परंतु जिसने बाह्य में नग्न रूप धारण किया है और अंतरंग में भाव संयम नहीं है तो वह भी असंयमी ही है, इसलिए ये दोनों ही असंयमी है, तो दोनों ही मंदन योग्य नहीं है। यहाँ आशय ऐसा है अर्थात ऐसा नहीं जानना चाहिए कि जो आचार्य यथाजात रूप को दर्शन कहते आए हैं वो केवल नग्न रूप ही यथाजात रूप होगा, आगे यथाजात रूप मुनि की बात चल रही है, वह यहाँ सम्यक दृष्टि का प्रकरण नहीं चल रहा है, यथाजात वाला प्रकरण चल रहा है आगे की गाथा में 24 में 25 में, तो नग्न हो गया इसलिए यथाजात रूप हो गया इसलिए मुनि हो गया वो बात नहीं लेना है, उसी को दर्शाने के लिए उसको ऐसे ही में कहा है। वेश धारण की बात है, सम्यक दृष्टि को वेश धारण करने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि आचार्य तो बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह से रहित हो उसको यथा जात रूप कहते हैं, अभ्यंतर भाव संयम बिना बाह्य लग्न होने से तो कुछ संयम होता ही नहीं ऐसा जानना। यहाँ कोई पूछे कि यहाँ बाह्य वेश शुद्ध हो आचार निर्दोष पालन करने वाले के अभ्यंतर भाव में कपट हो उसका निश्चय कैसे हो? मायाचरण तो ठीक है, अभ्यंतर में हो नहीं हो क्या जाने हम, तथा सूक्ष्म भाव केवली गम्य है, जो परिणति है वो तो केवली गम्य है, मिथ्या तो उसका निश्चय कैसे हो? निश्चय बिना मनने की क्या रीति? उसका समाधान के ऐसे कपट का जब तक निश्चय नहीं हो तब तक आचार शुद्ध देखकर वंदना करे उसमें दोष नहीं है, और कपट का किसी कारण से निश्चय हो जाए तो वंदना नहीं करे, परिचय करके अगर निश्चय हो गया तो वंदना आदि छोड़ देना, भले मुनि दिखते हैं दिखने में हो आचार सहित, केवलिंग में मिथ्यात्म के व्यवहार में चर्चा नहीं है, छिन्नमस्तक के ज्ञान गम्य की चर्चा ये है, जो अपने ज्ञान का विषय ही नहीं उसका बाध निर्बाध करने का व्यवहार नहीं है। सर्वज्ञ भगवान की भी यही आज्ञा है, व्यवहारिक जीव को व्यवहार का ही शरण है। यहाँ मुनि का प्रकरण चला है, यहाँ समय दृष्टि का चला है, वो बात है।
जो ग्रस्त धर्म में है वैसे असंयमी है ही, जो ग्रस्त में है तो ग्रस्त में है, इसलिए उसको असंयमी कहना चाहिए।
नहीं, उसको जो है संयमी कहेंगे तो फिर आगे सम्यक रत्न पाया उसको वो पूज्य है, उसको अर्घ्यते वो सुरासुर सुर असुरों से वो अर्घ्य दिया जाता है, वो बात क्यों करेंगे? फिर वो ऐसी बात क्यों करेंगे? कोई पूर्वापुर तो मेल खाना चाहिए ना, फिर मेल खाता है तो अर्थघटन सही है, लेकिन बात विरुद्ध पड़ती है तो वो बात माने ही ऐसा समझना चाहिए। हाँ, वो स्वतंबर आदि का प्रकरण चला है, और खास करके ये ग्रंथ है वो दार्शनिक ग्रंथ है। क्या ये दार्शनिक ग्रंथ है? वहाँ स्वतंबर निकल चुके थे कुमकुंदाचार्य देव के जमाने में, तो उनके खास निषेधार्थ ये ग्रंथ की रचना किया है। खास करके वस्त्र सहित जो मुनिपना मनाने लगे उसके सामने सारा ग्रंथ लिखा है। मुख्य दया वो बात चली है सब जगह। हाँ, यही निकलता है। सम्यक दृष्टि को तो कोई बाह्य चिन्ह है ही नहीं, मुनि को और पंचम गुण स्थान वाले को बाह्य चिन्ह होते हैं, सम्यक दृष्टि को तो कोई बाह्य विष का तो नियम ही नहीं है, क्योंकि चारों गतियों में होते हैं।
अन्याय
अनिति अभिक्ष
का
क्या
नियम है?
वो नियम नहीं है, नियम नहीं है उसका, कोई ऐसा परिणाम की मर्यादा अवश्य है। पूजा पूजा ना और मूल शब्द तो अर्घ्य थे, एनो अर्थ कर्यो छे पूजन, तो पूज्य कर्यो, पूजवा योग्य कर्यो, तो पूजा कर्या विना पूजवा योग्य एम एम ले ओखाण में सवाल छे। तो आचार्य क्यो छे? आपणे तो मानवू न मानवू आपणी स्वतंत्र सत्ता ने वात छे। आचार्य तो लखी नाख्यू छे, कुंदकुंद आचार्य तो लखी नाख्यू छे, बराबर छे। એમાં છે પૂજનીય છે, પણ ચડાવે તો એમાં દોષ નથી એમ કેવું છે? શું ભાવ કરે ને ભાવની સાથે દ્રવ ક્રિયા થાય તો ભાવ ક્રિયા થાય એ નિર્દોષ, અને દ્રવ ક્રિયા થાય એ દોષ, એમ લેવું? શું કેવું? આપણે મન ફાવે એમ કરો, એવું છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે એ ધર્મી છે, કે જેને ધર્મ પ્રાપ્ત છે। ધર્મ પૂજ્ય છે કે અપૂજ્ય છે? હે, તો ધર્મનો ધણી ધર્મી અપૂજ્ય છે ક્યાંથી લાવશો? જો ધર્મ પૂજ્ય છે તો ધર્મનો ધણી ધર્મી છે એ અપૂજ્ય છે ક્યાંથી લાવશો? કેવી રીતે લાવશો? એ ધર્મ એટલે ધર્મ પૂજ્ય હે કે વો પૂજ્ય? એવો આત્મા કી પવિત્ર દશા હૈ, જેવી આત્મા કી પવિત્ર દશા હૈ તો પૂજનીય હૈ। क्यों पूजनीय नहीं है?
पूजा तो नहीं है, नमस्कार तो पूजा है।
नमस्कार भी पूजा है, अर्घ भी पूजा है, स्तुति करना भी पूजा है, अभिषेक भी पूजा है, प्रदक्षिण करना भी पूजा है, सब पूजा का ही अंग है। ये जिनेन्द्र वर्णी ने लिखा है पूजा के अंग में सबको लिया है, सभी को पूजा ही कहते हैं।
हाँ,
बाकी पूजा के सब अर्थ है। हाँ उतनी ही पूजा मानते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं उसको ही पूजा मानते हैं। हाँ व्रत पर्व के दिनों में दस लक्षण में सम्यक दर्शन की पूजा की जाती है अर्घ चढ़ा करके, आठों अर्घ चढ़ा करके। तो सम्यक दर्शन की तो हमें पूजा करनी है और सम्यक दृष्टि की नहीं करनी है। क्या है
मात्र सम्यक दर्शन की थोड़ी है, तो की एक साथ है
नहीं, अलग अलग भी है। हाँ अलग अलग भी है, तीनों के साथ भी है और तीनों के अलग अलग भी है। सम्यक दर्शन की पूजा है, सम्यक ज्ञान की पूजा है, सम्यक चारित्र की पूजा है और रत्नत्र की पूजा है, चार पूजाएं हैं। हाँ दिगंबर एक को नहीं है क्यों नहीं जानते आप लोग तो मूल दिगंबर है,
है? सबसे नहीं है।
चारित्र का सम्यक चारित्र का ऐसी तीन पूजा की जाती है, अलग अलग तीन पूजा की जाती है तीन दिनों में, आखिर के तीन दिनों में आठ नौ दस तीन दिनों में तीन पूजा ऐसे प्रकार की जाती है। अर्घ भी चढ़ाया और अर्घ चढ़ाने के बाद उनको सम्यक दर्शन हुआ। अर्घ तो मिथ्या तो अवस्था में चढ़ाया और बाद में उसको सम्यक तो हुआ, तो उनको सम्यक तो नहीं होना चाहिए था। अगर ये दोष होता तो प्रधान का दोष आता तो उनको नहीं होना चाहिए था। ये सब चर्चा पंडितों के साथ हमारी हो चुकी है, हमारे जो बड़े बड़े पंडित हैं उनके साथ सब चर्चा हो चुकी है, सुगानी जी वाली सब हो चुकी है। हाँ कोई उत्तर नहीं है इसका। और कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की 236 गाथा में तो वो दान का अधिकार चला है, आहार दान का अधिकार चला है। तो आहार दान के तीन पात्र बोले हैं मुनिराज, पंचम गुण स्थान वर्तिक शुल्लक इलक और अविरत सम्यक दृष्टि, तीनों दान का अधिकारी बुलाया है। और तीनों को नवधा भक्ति से आहार दान देना, क्या लिखा है तीनों को नवधा भक्ति से। तो कौन सी भक्ति बाकी रही है भी, नवधा भक्ति में कोई चीज बाकी रहती है? स्वर्ग बाकी रहता है, पूजन बाकी रहता है, चरण धोना बाकी रहता है, क्या है? गुरुदेव के हम चरण धोते थे आहार दान देते पहले, गुरुदेव के तो सब जानते हैं हम लोग कि जब गुरुदेव का हमेशा एक दिन भी बाकी नहीं है, सुबह शाम भी बाकी नहीं है। जितनी दफे वो आहार लेते थे उतनी दफे उनके चरण धोते थे कि नहीं धोते थे? क्यों वो नहीं जानते थे कि किसी को मिथ्यात्व लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा उनका ज्ञान नहीं था क्या? और श्रीमद जी ने 225 में क्या कहा कि जो सत्पुरुष को परमात्मा जानते हैं उनको मोक्ष मार्ग निकट है और जो नहीं जानते उनको मोक्ष मार्ग विकट है। इसलिए नमस्कार आदि से लेकर पराभक्ति के हद तक इनकी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। हाँ और पंद्रहवीं गाथा में क्या कहा कि जिसको अनुभव हुआ, अनुभूति जो संपन्न हुआ वो समस्त जिन शासन है, वो अधूरा जिन शासन है ऐसा नहीं लिखा। चतुर्थ गुण स्थान है और अविरत है, इसलिए वो अधूरा जीर्ण शासन है ऐसा नहीं लिखा। जीर्ण शासनम सब्वम, सब्वम शब्द का प्रयोग किया है कुंदाचार्य ने। क्या बात है इसमें, इतनी समझना है कि इसमें रहस्य क्या है, उतना ही समझना है। कार्तिकेय अनुपेक्षा में प्रकरण प्रकरण चला है पंचम गुण, देशव्रति का तो प्रकरण चला है, और उसमें सम्यक दृष्टि को बीच में लेकर के ये बात किया है टीका में, वो बात चलिए। वो सब आधार दंशन मूल दमो में हमने दिया है, 175 आधार दिए हैं आगम के, उसमें आगम के आधार दिए हैं, बनारसी दास के नहीं दिए, श्रीमद जी के नहीं दिए, गुरुदेव के नहीं दिए, टोडरमल जी के नहीं दिए, किसी भी ज्ञानी का नहीं दिए, सब मुनियों का और आचार्यों का ही दिया है उसमें। ये गड़बड़ बहुत चली थी अपने यहाँ, वंदन नहीं करना, नमस्कार नहीं करना, वो नहीं करना, अर्घ नहीं चढ़ाना, ये नहीं करना, तो पूरा इतना इतना आधार दिया है। और 55 ग्रंथ में से आधार दिया है, कितने 55 ग्रंथ में से करीब 250 से अधिक आधार दिया है।
तो एक प्रश्न उठेगा कि अपन 20 पंथी लोग जो पद्मावती वगैरह की धर्मेंद्र वगैरह की पूजा करते हैं, ये अपन मिथ्या दृष्टि को कहते हैं, ये भी दृष्टि से नहीं में प्राप्त किया।
तो कैसे जाना,
पुराण के माध्यम से जाना,
वो तो नाम बोलते हैं कि नहीं है कैसे जाना, वो तो जिसको पूजा करनी है तो इस बात को घुसाते हैं कि वो सम्यक दृष्टि है, वास्तव में है नहीं। पूजा आई जाती है ठीक है। कहते हैं यहाँ तत्वज्ञान होने पर कुछ भी व्रतादिक नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है, इसलिए पहले तत्वज्ञान का उपाय करना, पहले व्रतादिक धारण करने में शक्ति का खर्च नहीं करके अपनी शक्ति का खर्च पहले तत्वज्ञान से सम्यक्त्व पाने का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना, पहले मिथ्यात्व तोड़ने के हिसाब से तत्वज्ञान का अभ्यास करना, पर सम्यक पाने के बाद कषाय मिटाने के लिए फिर बाह्य साधन भी करना। यही योगिंद्र देवकृत श्रावकाचार में कहा है, दंशनो भूमि बाहिरा जीव वयरमुख न होती, इस सम्यक दर्शन भूमि का बिना ये जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते, उनको व्रत होते ही नहीं। जिसको सम्यक्त्व नहीं है वो भले ही व्रतादिक धारण करे फिर भी उसको व्रत है ऐसा स्वीकार करने में नहीं आता है, वो तो अव्रति ही है, मुनि होने होते हुए भी अव्रति ही है। सम्यक दृष्टि अव्रति सम्यक दृष्टि है, जबकि ये अव्रति मिथ्या दृष्टि है व्रत धारण करने पर भी। अर्थात जीव जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है, वे यथार्थ आचरण नहीं कर आचरते, वे विशेष बतलाते हैं, इसी पर विशेष बात कर रहे हैं कि जिसको तत्वज्ञान नहीं है उसका यथार्थ आचरण होता ही नहीं, आचरते ही नहीं। आचरते हैं कि नहीं आचरते हैं, गुरुदेव तो साफ कहते थे कि सम्यक दृष्टि निवृत्त हो गया है। क्या
निवृत्त हो गया,
और द्रविलिंगी मुनि निवृत्त हुआ ही नहीं है। राजकाज छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, तो क्योंकि निवृत्त हुआ ही नहीं है। दो बात साथ में लेते थे कि द्रविलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि निवृत्त हुआ ही नहीं और सम्यक दृष्टि निवृत्त हो गया है। जाओ ऐसे बराबरी करते थे, जरा भी निवृत्त नहीं हुआ ऐसा कहते थे। निवृत्त नहीं हुआ, नहीं जरा भी निवृत्त नहीं हुआ ऐसा बोलते थे। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, बड़ी प्रतिज्ञा, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। मिटे कहां से, वो तो मिटी नहीं है। इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, परिणाम बिगड़े सुधरे इसका कोई ध्यान लक्ष्य नहीं होता। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं, वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम आकुलता उसको होती है। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से, भूख की पीड़ा होती है, पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है। जैसे रोगी देखता है कि कब मेरा रोग का उदय पूरा होवे और मेरी पीड़ा शांत होवे, ऐसे वो भी उपवास करके कब समय पूरा हो जाए उसकी गिनती करता रहता है। धर्म साधन नहीं करता, धर्म सो जाता है या कुछ न कुछ उपयोग कहीं न कहीं अशुभ अशुभ में भी लगाता है, दुकान पर चला जाता है, व्यापार धंधा कर लेता है, कोई भी ताश बाश भी कोई खेल लेता है, सब चलता है। हम पहले कलकत्ता गए ना, तो वो ऊपर प्रवचन करके नीचे उतरे तो करीब 10:30 बज गए थे। मानसन पूरा करके फिर पूजा करके फिर उतरे तो काफी टाइम निकल गया। हम सोचे 10:30-11 बजा है, नीचे लोग सोए थे नए मंदिर में, नीचे ग्राउंड फ्लोर कुछ 8-10 आदमी सोए हुए थे। हमने सोचा कि ये सोने का तो टाइम नहीं है, 10:30-11 बजे कोई सोने का तो टाइम होता नहीं, ये लोग मंदिर इधर मंदिर जी में क्यों सोए हैं। हमने पूछा, कभी ऐसा देखा नहीं था हमने, हमने पूछा कि इधर क्यों लोग सोते हैं, क्योंकि उपवासी लोग सोए हुए हैं, क्या पर्व के दिन है इसलिए उपवास करते हैं, पीड़ा सही नहीं जाती तो सो जाते हैं, पाप के परिणाम हो जाते हैं। ऐसा चलता है संप्रदाय में, ऐसा अंधेरा चलता है सब। रोगी की भांति काल गंवाता है धर्म, उनको आश्चर्य हुआ है, अच्छा ऐसे सो जाते हैं, ऐसा लगा उपवास करके ऐसे सो जाते हैं, और वो भी मंदिर जी में आकर के। घर पे सोए तो कोई जाने भी नहीं, यहाँ तो सब जाने के उपवासी लोग है। उपवास का भी प्रदर्शन हो जाता है और अज्ञान का भी हो जाता है। ठीक है, उपवास करके घर में नहीं रहना, मंदिर में रहना, भले सो जाना, तो निगोदिया जी शीत शिला पे भी है, इससे क्या मतलब।
एक विपरीत अभिप्राय और आया, तो मंदिर में रहने से मुझे लाभ होता है, ये भी
विपरीत अभिप्राय, ये भी विपरीत अभिप्राय, वो भी विपरीत अभिप्राय है कि मंदिर में रहने से लाभ होता है, वो भी विपरीत अभिप्राय है। सही बात है, धर्म साधन नहीं करता तो प्रथम ही सद्धति जाने उतनी प्रतिज्ञा क्यों न ले। जब पीड़ा सहन नहीं होती हो तो जितना हो सके उतनी प्रतिज्ञा ले। दुखी होने में आर्त ध्यान हो उसका फल अच्छा कैसे लगेगा, आर्त ध्यान का फल तो अच्छा नहीं आएगा। अथवा
हाँ उसकी बात है, सम्यक दृष्टि को तो ऐसा करते हैं, उसको ऐसा भाव नहीं होता, आकुलता से नहीं होता। अथवा उस वो तो प्रकरण ही चल रहा है, मिथ्या दृष्टि जैना भाषियों का तो प्रकरण चल रहा है। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे तृषा लगे तो पानी तो न पिए और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार से करे। पट्टे भीगी पट्टे पट्टे बांधते
हैं,
पानी में बैठ जाए तो मुंह से पानी नहीं लेना,
मुंह से नहीं लेना, बाकी सब
अंग से लेना, इसका मतलब ये हो गया। वो घृत तो छोड़े, घी को छोड़ देता है, और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करें। घी छोड़ देता है तो दूसरी पुष्ट वस्तु को लेता है। इस प्रकार अन्य जानना, यदि परिश्रम नहीं सहे जाते थे पर विषय वासना नहीं छूटी थी तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे? वह तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। क्या होता है? भूखा रहा और नॉर्मल वो फूड लेता, नॉर्मल आहार लेता तो उतनी गति से नहीं लेता, उतनी तीव्रता से नहीं लेता, लेकिन पालना में फिर उतनी तीव्रता कर लेता है। इसलिए तो वो इतनी कसाई नहीं करता और आहार लेता, वो अच्छा था, इतना रस तो नहीं बढ़ता है उसका। उल्टा राग भाव तीव्र होता है। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तो परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है, जब उपयोग को कहीं ना कहीं जोड़ने का विचार कर, जैसे उपवास करके फिर क्रिया करता है, प्रमद कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं, जुआ खेलते हैं। आजकल वीडियो आ गया है,
टाइम पास करने का अच्छा
साधन, हाँ टेलीविजन आ गया है, लगा लेते हैं, चलो टाइम निकल जाएगा, मनोरंजन में टाइम निकल जाएगा तो भूख का दुख नहीं लगेगा। कितने परिणाम बिगाड़े इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अथवा सो रहना चाहते हैं, देखो ये सोने की बात आई है, उस जमाने में भी सोते होंगे, 200 साल पहले भी सोते होंगे, सो रहना चाहते हैं। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना, जैसे कैसे भी काल पूरा करो, जैसे रोगी चाहता है ऐसी बात होगी, बहुत अर्थ ध्यान में आ जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना, अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं बाद में उससे दुखी हो तो प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं, पहले तो प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं फिर सही नहीं जाते तो प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, वो तो उसके कोई कीमत ही नहीं रही। सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, नहीं लेना वो महापाप नहीं है, लेकिन लेकर के भंग करना महापाप है। इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। देखो जितना पाला उतना तो अच्छा है ना, भले ही बाद में तोड़ दिया, ऐसे 3 दिन का उपवास के प्रतिज्ञा किया और 2 दिन के बाद छोड़ दिया तो 2 दिन का तो फायदा हुआ
नहीं,
ऐसा भी नहीं है,
महापाप
लिया है। इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी शक्ति को समझे बिना निर्विचार का मतलब ये है कि आगे पीछे का अपनी शक्ति का विचार किए बिना प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है, बाद में दिशा बिगड़ जाती है। जैन धर्म में तो प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं, कि प्रतिज्ञा नहीं लिए उसी को दंड देना है वो तो नहीं है। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, ये देखो अनुक्रम बताया, पहले व्रति हो ऐसा नहीं कहा, पहले तत्व का अभ्यास करें, तत्व को समझे, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने कि ये चीजें छोड़नी है, क्यों छोड़नी है, किस प्रकार का दोष होता है, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, तो इसका त्याग करने से मेरे परिणाम में क्या लाभ होगा उसको समझे, फिर अपने परिणामों को ठीक करे और फिर अपने परिणामों को भी यथास्थान करे। परिणाम का तो पहला लक्ष्य होना चाहिए, फिर क्रिया की बात है। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, जैसे कोई दूध में उफान आता है तो लगता है क्या दूध बढ़ गया, आधी तपेली थी दूध की, उफान आ गया तो क्या दूध बढ़ गया आधी तपेली, के नहीं दूध तो बड़ा नहीं है, घट गया है, जितना पानी बल जल गया उतना घट गया है। ऐसे उफान आता है तो प्रतिज्ञा ले लेते हैं, बाल बुद्धि है, कैसी बुद्धि है ये, बाल बुद्धि है, उफान आता है प्रतिज्ञा ले लेते हैं, बाद में सहन नहीं होता तो तोड़ देते हैं। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, उतनी दृढ़ता अपने परिणामों की समझे, उसका विश्वास हो जाए, उसकी निशंकता आ जाए तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति उस प्रतिज्ञा पालन करने में मेरा स्वास्थ्य कितना है, शरीर शक्ति है या नहीं है। मुनिराज आहार करने को क्यों आते हैं, एक टाइम पे आहार क्यों करते हैं, तो शरीर शक्ति को उतना देखते हैं कि महाव्रत आदि का पालन करने में ये संयम को मार भाई संयम टिकाने में उतना कारण पड़ेगा, तो उसको देख करके करते हैं। शरीर की शक्ति का विचार करें और द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करें, तो प्रतिज्ञा वहन करने योग्य अनुकूल परिस्थिति है या नहीं है इसका भी विचार करें। इस प्रकार विचार करने के करके फिर प्रतिज्ञा करनी, प्रतिज्ञा करने में तो विचार करके करना, इसके पहले कभी नहीं करना। यह भी ऐसी करनी, प्रतिज्ञा भी ऐसी करनी कि जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, कहीं भी निरादरपना न आ जाए, परिणाम चढ़ते रहे उत्तरो उत्तर, दिन प्रतिदिन परिणाम चढ़ते रहे, इसी का नाम प्रतिज्ञा। परिणाम उतर जाए वो प्रतिज्ञा बराबर नहीं है।
परिणाम चढ़ते रहे मन की सहायता होती रहे,
नहीं परिणाम चढ़ते रहे मैंने कहा कि हमारे आत्म कल्याण का उत्साह बढ़ता रहे। हम क्यों करते हैं ये सब, भाई धर्म की क्रिया भी क्यों करते हैं, कि हमारे आत्म कल्याण के लिए करते हैं, तो हमारा जो उत्साह है, हमारा जो संवेग है वो बढ़ता रहे, प्रतिज्ञा लेने के बाद बढ़ जाए, ये कहना का अभिप्राय है, उतरते नहीं हो जाए। ऐसी जैन धर्म की आमनाएं है, देखो ऐसी जैन धर्म की आमनाएं है, यानी यही यथार्थ कार्य पद्धति है। जैन धर्म की आमनाएं का मतलब यथार्थ कार्य पद्धति ऐसी ही होनी चाहिए, अन्यथा होनी नहीं चाहिए।
ऐसी आमनाएं तो सबको स्वीकार है,
हाँ स्वीकार नहीं चाहिए, जिसको नहीं स्वीकार है वो तो जैन धर्म को नहीं स्वीकारता है। अगर वो कोई नहीं स्वीकारता है तो जैन धर्म के आमना को नहीं स्वीकारता है, वो जैन धर्म को ही नहीं स्वीकार करता है, ऐसा क्यों नहीं ले? हाँ, होनी चाहिए, सबको नहीं है तो वो उतना ठीक नहीं है। मानो कि सबको नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तो सही नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। ये तो गुण का मार्ग है, अवगुण का मार्ग नहीं है। गुण होवे उतना लाभ है, अवगुण होवे उतना नुकसान है। गुरुदेव ने तो इस अधिकार पर प्रवचन भी किए हैं, उस प्रवचन को छपे भी हैं अपने यहाँ, हिंदी गुजराती दोनों में छपे हैं। गुरुदेव जी की ये बात तो गुरुदेव बार बार कहते थे, क्योंकि संप्रदाय में व्रतादि की महिमा बहुत है। संप्रदाय में क्या, हमारे यहाँ भी थोड़ी बड़ी ये गड़बड़ चलती है, कोई उपवास करता है, कोई कुछ कुछ करता है, तो उसको ठीक गिनते हैं। ये समझदारी की बात होनी चाहिए कि यथार्थ है या अयथार्थ है, कैसा है, हमारे जैन धर्म के आमना अनुकूल है या आमना से विपरीत है। आमना टूटती है, धर्म के आमना टूटती है तो बात तो स्वीकार करनी नहीं चाहिए, उसका निषेध करना चाहिए। नहीं करना तो किस प्रकार से करना वो बात चलिए, वरना मत करना, जैसे मन चाहे मनमानी कर लेना वो बात इधर नहीं है।
अनुक्रम है, इस अनुक्रम से,
इस अनुक्रम से काम करो। रोटी करते हैं तो पहले गेहूं लाते हैं, उसको आटा बनाते हैं, हाँ, आटा में से वो निकाल देते हैं, वो चाणी लगा करके, हाँ, फिर उसमें पानी डालते हैं, उसको बराबर पिंड करते हैं, फिर उसको रोटी बुनाते हैं, फिर वो उसको सिकाते हैं, फिर रोटी की बात आती है। तो इस तरह से रोटी करना, दूसरी तरह से रोटी करने जाओगे तो रोटी होगी नहीं, तो क्या रोटी नहीं करना? अरे नहीं करने की बात नहीं है, जैसे हो सके वैसे करना, वरना होता ही नहीं, उसको व्रत कहते ही नहीं भगवान को, भगवान उसको व्रत कहते ही नहीं। अज्ञानी भले ही करे कहे, भले सारी दुनिया उसको माने के व्रत है, भगवान नहीं मानते हैं। तो जिन मत के बाहर है, क्या है, जिन मत के बाहर है, ऐसा समझ लेना बस है। उसके पालना कराने को जाना कि नहीं जाना, हमारे विवाह हो, उपवास किया हो, कुंवर साहब हो, जाना कि नहीं जाना, हाँ, क्या करना, उसको समझाना कि सही बात ऐसी होती है, जो करना वो यथार्थ करना, यथार्थ कुछ मत करना, उससे नुकसान होगा, ऐसा समझाना। और ऐसा समझाना वही सच्चा पालना है, वो थोड़ा खाना खिला दिया वो पालना नहीं है, वो सच्चा समझाया समझाना वही सच्चा पालना है उसका। तो
पालना तो उसकी उपवास भी काम चल रहा है,